ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 61 फसलों की 109 किस्में जारी की। दिल्ली भाजपा ने अपने झुग्गी विस्तार अभियान के अंतर्गत आज शहर के 185 झुग्गी क्लस्टरों में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दिल्ली से सटे फरीदाबाद के गांव में और नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने अपने संसदीय क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे 28वें दिल्ली पुस्तक मेले का आज समापन। और राजधानी दिल्ली में आज सुबह से रूक रूक कर बारिश हो रही है, तापमान में गिरावट दर्ज हुई। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में अधिक पैदावार वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में जारी की। इन किस्मों में 61 फसलें शामिल हैं, जिनमें 34 खेती और 27 बागवानी फसलें हैं। खेती की फसलों में बाजरा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और अन्य फसलों के बीज शामिल हैं। बागवानी फसलों में फल, सब्जी, कंदमूल, मसाले, फूल और औषधि पौधों के बीज हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। नई फसल किस्मों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे कृषि में मूल्यवर्धन होगा। किसानों ने कहा कि नई किस्मों से उनके खर्चों में कमी आएगी और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने मोटे अनाज का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लोग पोषक खानपान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती के लाभों के बारे में बात करते हुए कहा कि आम जनता का जैविक कृषि पर भरोसा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोग जैविक खाद्य पदार्थों का उपभोग कर रहे हैं और इनकी मांग करते हैं। किसानों ने प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र की जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों को नई किस्मों के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। श्री मोदी ने नई फसल किस्म विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों की सराहना की। वैज्ञानिकों ने बताया कि वे प्रधानमंत्री के सुझावों के अनुरूप काम कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से कहा कि आज किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है। श्री चौहान ने कहा कि इन फसलों के बीज जलवायु अनुकूल हैं और खराब मौसम में भी अधिक पैदावार दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये किस्में पोषक तत्वों से भरपूर हैं।
प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है किसानों की आय बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना और जो कृषि उत्पाद मिले वो ऐसे मिले जनता को जो पोषण युक्त हो, मानव शरीर को भी स्वस्थ रखें ताकि उत्पादन बढ़ सके, उत्पादन की लागत भी घट सके और जनता को पोषण युक्त आहार मतलब अनाज, फल, सब्जियां मिल सके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को बधाई देना चाहूंगा।
हमारे संवाददाता ने कार्यक्रम में मौजूद कुछ किसानों से बातचीत भी की। किसानों ने भरोसा जताया कि इन फसलों से आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।
मेरा नाम नीतू कुंडू है और मैं गाजियाबाद से हूँ। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 109 फसल के बारे में बात की और लॉन्च किया। उससे हम किसानों को काफी फायदा होगा। नए बीज के अंदर गर्मी से लड़ने की भी क्षमता है और बारिश से लड़ने की भी क्षमता है। उससे हमारा समय भी बचेगा और उसमें जो हम पैसे लगाते हैं वो भी कम लगेगा पैसा और मजदूरी भी बचेगी, तो उससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी, तो किसान को इससे फायदा है।
जो ये वैरायटियां आई हैं ये किसान के लिए मैं किस्म से मानता हूं कि वरदान है, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए और देश को भी फायदा होगा उत्पादकता बढ़ेगी। तो जो कंसेप्ट था कि किसानों की आमदनी दुगनी करनी है उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे।
महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश में महिलाओं और बच्चों के आरोग्य को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगी प्रयासों के महत्व पर बल दिया है। उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महिला तथा बाल विकास मंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों तथा राज्यों के सामाजिक कल्याण मंत्रियों के साथ अपनी पहली राष्ट्रीय स्तर की बैठक की अध्यक्षता के दौरान ये बात कही। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने एक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए इस प्रकार के सहयोग को आवश्यक बताया। उन्होंने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 तथा मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के तहत मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों का उल्लेख किया। इस बैठक में 28 राज्य मंत्रियों में से 21 मंत्रियों ने भागीदारी की। इसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न मुख्य पहलों के लिए जारी कार्यक्रम और भविष्य की रणनीतियों की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली भाजपा ने अपने झुग्गी विस्तार अभियान के अंतर्गत आज शहर के 185 झुग्गी क्लस्टरों में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्वी दिल्ली से लोकसभा सांसद हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली के झुग्गी क्लस्टरों को स्वच्छ तथा स्वस्थ बनाना भाजपा का संकल्प है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और स्वस्थ व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करता है। दिल्ली मेट्रो ने जनता को अपनी सुरक्षा के लिए आवासीय क्षेत्रों से गुजरने वाली एलिवेटेड मेट्रो लाइंस के करीब पतंग उड़ाने से बचने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो ने कहा कि 25,000 वोल्टेज ओवरहेड इक्विपमेंट ओएचई तारों के साथ किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क घातक हो सकता है। स्वतंत्रता दिवस के आसपास पतंग उड़ाने की गति तेज हो जाती है और इससे पतंग की डोर ओएचई तारों में उलझने या चलती ट्रेन के पेंटोग्राफ में फंसने की संभावना बनी रहती है। ऐसी घटनाएं ओएचई या पेंटोग्राफ को नुकसान पहुंचाकर या ट्रिप करके मेट्रो सेवाओं को बाधित कर सकती है। दिल्ली में एक 13 वर्षीय बच्चे की बिजली का करंट लगने से मृत्यु पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शोक व्यक्त किया है। श्री सचदेवा ने कहा कि राजधानी में पहले कभी एक मानसून में इतने अधिक बिजली करंट हादसे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली करंट लगने से इस वर्ष हुई मौतों के सभी मामलों में संबंधित पावर डिस्कॉम पर आपराधिक लापरवाही का मामला दर्ज होना चाहिए।
दिल्ली का रनहोला क्षेत्र कोटला विहार, 13 साल का मासूम बच्चा क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन बिजली के एक लीकेज करंट की वजह से उस बच्चे की मौत हो जाती है। और ये पहली घटना नहीं है दिल्ली में, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और दिल्ली पहला ऐसा एक राज्य बन गया है जहां इतनी घटनाएं, इस लगभग 7 से 8 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें उन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कारण दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार, दिल्ली की पावर डिस्कॉम्स और दिल्ली सरकार का गठबंधन जो दिल्ली को लूटने में लगा है। कोटला विहार में ये घटना हुई है, वहां इलीगल तार डाली गई थी डेयरी में, जिसकी वजह से वो करंट बाहर सड़क पर आया है।
दिल्ली से सटे फरीदाबाद के गांव कांवरा कला में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तिरंगा हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक है। इस तिरंगे की खातिर लोगों ने अपनी शहादत देकर देश को आजादी दिलाई है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की बदौलत हमें स्वतंत्रता मिली और जिनके कारण ये कायम है, उन सभी की कुर्बानी हमेशा स्मरणीय रहेगी। श्री गुर्जर ने कहा कि हर घर फहराता हुआ तिरंगा उन शहीदों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आज अपने संसदीय क्षेत्र में हर घर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। इस यात्रा में भाजपा के अन्य नेता भी शामिल हुए। इस अवसर पर सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है। उन्होंने कहा कि हम तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। साथ ही भाजपा सांसद ने कहा कि हम विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान एक जन आंदोलन बन गया है। अगर आप देख लीजिए, आने वाले स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में हमारे नई दिल्ली जिले के अध्यक्ष श्री राजीव राणा जी के नेतृत्व में नई दिल्ली जिले का युवा मोर्चा आज तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। तिरंगा हमारी आन शान और बान है, उसको कभी न झुकने देने का हम संकल्प करते हैं।
चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी अपने संसदीय क्षेत्र में हर घर तिरंगा यात्रा अभियान की शुरुआत की। श्री खंडेलवाल ने कहा कि लोगों में यह अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है और इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। आगामी स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इस अभियान में शामिल हों और देशभक्ति की भावना को और प्रगाढ़ करें।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश में देशभक्ति का जो जज्बा लोगों के मन में पैदा किया है और अभी हर साल की तरह से इस साल भी उन्होंने एक आह्वान दिया है हर घर तिरंगा। ये आह्वान नहीं है, ये पूरे देश के लोगों को ये बताना है कि वो अपने घर में तिरंगा लहराएं, अपनी दुकानों पर तिरंगा लहराएं और तिरंगा लहरा करके इस बात को प्रदर्शित करें कि वो अपनी मातृभूमि से, अपने देश से कितना प्यार करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में जो ये लोग आए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी जी का संदेश लोगों के दिलों में घर कर गया है और आने वाले चार दिनों में पूरे देश में तिरंगे का उत्सव दिखाई देगा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे 28वें दिल्ली पुस्तक मेले का आज समापन हो गया। 5 दिवसीय इस मेले का विषय भारतीय पुस्तकों का वैश्विक प्रभाव था। इस मेले का आयोजन बच्चों और युवाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इस बार पुस्तक मेले में 50 से अधिक प्रकाशकों ने हिस्सा लिया। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ITPO द्वारा आयोजित दिल्ली पुस्तक मेले में इस बार 50 से अधिक प्रकाशकों ने 80 से अधिक स्टॉल लगाए। मेले में पुस्तकों, पत्रिकाओं, शिक्षण सामग्री के साथ साथ उपहारों की भी एक विशाल श्रृंखला लोगों के लिए उपलब्ध थी। पुस्तक मेले में कई राज्यों से पुस्तक प्रेमी, लेखक और प्रकाशकों ने हिस्सा लिया। इस बार आयोजित मेले में आगंतुकों के लिए विशेष तौर पर रीडर्स कॉर्नर भी बनाया गया था। इसके अलावा मेले में फूड कोर्ट था, जहां लोग देश विदेश के व्यंजनों का आनंद ले रहे थे। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
दिल्ली में बारिश के कारण जलभराव एक बड़ी समस्या बनी हुई है। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने इसे दिल्ली सरकार की लापरवाही बताई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के बड़े नाले और दिल्ली नगर निगम के छोटे नालियों की सफाई नहीं होने के कारण अलग अलग इलाकों में जलभराव हो रहा है। श्री बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली सरकार का कोई मंत्री या एमसीडी की महापौर का अब जलभराव पर कोई बयान या निर्देश भी नहीं आता है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी नाकामी के कारण ही दिल्ली डूब रही है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजधानी के सुनहरी, कुशक और बारापुला नालों से गाद निकालने के लिए चल रहे कामों का जायजा लिया। राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में आज सुबह से बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाये रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 61 फसलों की 109 किस्में जारी की। दिल्ली भाजपा ने अपने झुग्गी विस्तार अभियान के अंतर्गत आज शहर के 185 झुग्गी क्लस्टरों में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दिल्ली से सटे फरीदाबाद के गांवों में और नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने अपने संसदीय क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। और राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे 28वें पुस्तक मेले का आज समापन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।